अध्याय 13 उपभोक्ता व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर। उत्पादकों के सामने दो प्रमुख समस्याएं रहती हैं। पहली, अपनी उत्पाद को उपभोक्ताओं के ध्यान में लाना। दूसरी, उन्हें खरीदने के लिए प्रभावित करना। जब उपभोक्ता कोई सामान खरीदता है तो उसे निर्णय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उन्हें यह निर्णय करना रहता है कि किस ब्रांड का सामान खरीदा जाए या सेवाएं प्राप्त की जाए। जैसे किसी को कार खरीदनी है तो बहुत सी कंपनियों द्वारा उत्पादित कारों में से कौन सी कार लाई जाए। इस प्रकार के निर्णय बहुत सोच विचार कर लेना पड़ता है। कभी कभी जल्दीबाजी में किए गए निर्णय के कारण अधिक सोच विचार की अवसर नहीं मिल पाता और निर्णय ऐसे कारणों से प्रभावित होता है जिससे उपभोक्ता स्वयं अनभिज्ञ रहता है। ऐसे निर्णय जो बहुत सोच विचार कर किए जाते हैं उन्हें भी अचेतन प्रक्रियाओं अथवा असंगत बातों से प्रभावित करती हैं। उपभोक्ता व्यवहार केवल मनोविज्ञान का ही नहीं विषय वस्तु है। उपभोक्ता व्यवहार को ठीक से समझने के लिए समाजशास्त्र, संचार एवं अर्थशास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक है। मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है उपभोक्ता शोधों में वैज्ञानिक विधियों की भूमिका के महत्व को बताना। उत्पादकों, वितरकों, विज्ञापनों के अध्ययनों को मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण, निर्णय प्रक्रिया और सीखने पर निर्भर करता है। औद्योगिक एवं अभियांत्रिकी मनोविज्ञान ऐसे लोगों के व्यवहार का अध्ययन करता है जो उत्पादन से संबंधित होते हैं, जबकि उपभोक्ता मनोविज्ञान में उसके उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्र के अध्ययन की शुरुआत प्रचार एवं बिक्री से आरंभ हुई, जिसका लक्ष्य प्रभावशाली संचार के माध्यम से उत्पादों एवं वितरकों से उपभोक्ता को उस वस्तु के संबंध में सूचित करना तथा उसे उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रचार के द्वारा उपभोक्ता को नई उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के सिवाय सूचना भी दी जाती है तथा यह भी बताया जाता है कि वह वस्तु किस प्रकार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उपभोक्ता शोधों में दो तरफा संचार होता है, एक तो उपभोक्ताओं से उत्पादकों की ओर तथा दूसरा उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर। उत्पादकों की ओर से संचार का उपयोग 1920 में विज्ञापनों को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाकर विज्ञापन में उन्हीं बातों पर बल देकर उन्हें प्रभावित किया जाता है। उपभोक्ता मनोविज्ञान के क्षेत्र द फील्ड ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी। सन 1960 में उपभोक्ता मनोविज्ञान में काफ़ी विकास हुआ। 1968 से 1972 के बीच में जितने शोध पत्र छपे वे 1968 तक के शोध पत्रों से अधिक थे। 1967 तक करीब 1000 से 10000 के बीच शोध पत्र उपभोक्ता मनोविज्ञान से संबंधित छपे। उपभोक्ता मनोविज्ञान 1960 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में के एक स्वतंत्र डिवीजन के रूप में स्थापित हुआ था और उसी साल से एक जर्नल जिसका नाम जर्नल ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1964 में एक अन्य जर्नल जिसका नाम जर्नल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च है का प्रकाशन आरंभ हुआ। वास्तव में उपभोक्ता व्यवहार अंतर अनुशासिक होता है। यह बात 1969 में एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर रिसर्च के निर्माण से सिद्ध होता है। इस संघ में लोग मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, विपणन, कानून तथा औषधि विज्ञान से आते हैं। जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च जिसका प्रकाशन 1974 से आरंभ हुआ के शोध पत्रों को देखने से यह बात सिद्ध हो जाती है कि उपभोक्ता व्यवहार का संबंध विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से होता है। उपभोक्ता व्यवहार का आधार द बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कटोना ने बताया है कि उपभोक्ता व्यवहार 5 प्रकार के प्रभावित होता है। पहला, वे परिस्थितियां जो उपभोक्ता के विवेक की सीमा निर्धारित करती है, जैसे उनकी आय, संपत्ति और साख। दूसरा, उसका आर्थिक व्यवहार उसके क्रय शक्ति में कमी अथवा वृद्धि होने से प्रभावित होता है। तीसरा, उपभोक्ता व्यवहार उसकी आदतों से प्रभावित होता है। चौथा, अनुबंधनात्मक बाध्यता जैसे किराया, जीवन बीमा की किस्तें, कर और दूसरे प्रकार की किस्तें आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। पांचवा, उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक अवस्था, जिस प्रकार व्यक्ति का व्यवहार दूसरे कार्यों में बहुत से कारकों से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उपभोक्ता के रूप में भी प्रभावित होता है। उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण और सीखना आते हैं। प्रेरणा, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है, पर लोभनों से उन आवश्यकताओं की आपूर्ति होती है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बहुत सी क्रियाएं करता है। उपभोक्ता व्यवहार में व्यक्ति जिन वस्तुओं को खरीदता है अथवा जिनकी सेवाएं प्रदान करता है के प्रलोभन का वे कार्य करती हैं और उनमें आवश्यकताओं की संतुष्टि की योग्यता रहती है। जब व्यक्ति का व्यवहार सबसे पहले अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति से प्रेरित होता है, जब उसकी उन आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है, तब उसका व्यवहार दूसरी उच्च आवश्यकताओं से प्रभावित होने लगता है। प्रेरणा के अध्ययन की विधियां। उपभोक्ता व्यवहार में प्रेरणा का अध्ययन दो प्रकार से होता है। पहले, व्यक्तित्व विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें उनका गहराई से साक्षात्कार करते हैं। प्रक्षेपण विधि, व्यक्तित्व विधि परीक्षण और दूसरी विधियों का उपयोग करके व्यक्तियों के प्रेरणात्मक शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इस विधि से विभिन्न वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रेरणा से यह संबंध व्यक्तित्व मापन किया जाता है। इससे उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक और व्यक्तित्व संबंधी कारकों की पहचान कर सकते हैं। प्रेरणा अध्ययन की दूसरी सांख्यिक विधि है, जिसमें सर्वेक्षणों अथवा पूर्वनियोजित साक्षात्कारों द्वारा प्रेरणा की जानकारी प्राप्त की जाती है। उपभोक्ता शोधों में दो प्रकार की विधियों का स्थान है। टिबतर के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों में असुरक्षा और पूर्वाग्रह महत्वपूर्ण है, लेकिन सांख्यिकी विधि से प्राप्त आंकड़े भी उपभोक्ता अभिवृत्तियों के संबंध में समुचित सूचना प्रदान करते हैं। प्रत्यक्षीकरण, व्यक्ति किस प्रकार स्वयं का, दूसरों का और उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रत्यक्षीकरण करता है, यह उसके उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्ति का व्यवहार उसके प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है अथवा नहीं। सीखना व्यक्ति के उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करता है। आदत सीखने को प्रभावित करता है। व्यक्ति जब किसी वस्तु को खरीदता है अथवा किसी संस्था की सेवा प्राप्त करता है, तो यह उसके पूर्व अनुभवों पर आश्रित रहता है और बाद में वही क्रिया उसकी आदत में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान को जाड़ों में किसी ट्रैक्टर को चलाने में कठिनाई होती है, तो यदि भविष्य में उसे पुनः नया ट्रैक्टर खरीदना होगा, तो वह पहले ही परेशानियों से प्रभावित होकर पुनः उस कंपनी द्वारा निर्मित ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा। उपभोक्ता व्यवहार दूरदर्शन, अखबार, पत्रिका और दूसरे संचार माध्यमों से प्रभावित होता है। इस प्रकार उपभोक्ता व्यवहार प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण और सीखने पर निर्भर रहता है। उपभोक्ता अध्ययन में आंकड़े प्राप्त करने की विधियां। डाटा कलेक्शन मेथड इन कंज्यूमर रिसर्च। उपभोक्ता अध्ययन के विभिन्न चरणों में उपभोक्ताओं के व्यवहारों, उसकी प्रतिक्रियाओं के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसमें उपभोक्ताओं की अभिवृत्ति, विचार, प्रेरणा, मूल्य, चुनाव, क्रय की आदत और दूसरे चरों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। उपभोक्ताओं के विचार, प्रेरणा, मूल्य और पसंदगी ज्ञात हो जाने पर वस्तुओं के निर्माण में सुधार करने अथवा विकास करने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे वह ज़्यादा अच्छी प्रकार से आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगा और विज्ञापनों को भी अच्छी प्रकार से आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित कर सकते हैं। उपयुक्त समुचित आंकड़े प्राप्त करने की आवश्यकताएं। उपभोक्ता अध्ययन विधियों का वर्णन करने से पहले यह आवश्यक है कि उन बातों की जानकारी प्राप्त की जाए जो कि परिणामों की उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं। पहला, विधि की उपयोगिता। प्रत्येक विधि के अपने कुछ गुण एवं सीमाएं हैं, अतः परिणामों को विश्लेषित करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि आंकड़े किस विधि से प्राप्त किए गए हैं। दूसरा, प्रतिदर्श। जब हम किसी जनसमुदाय का अध्ययन करते हैं तो एक प्रतिदर्श का चुनाव उसी में से किया जाता है। यदि प्रतिदर्श का चुनाव ठीक से नहीं किया जाएगा तो उससे प्राप्त परिणाम वैध एवं विश्वसनीय नहीं होंगे। जब हम किसी वस्तु के संबंध में अध्ययन करते हैं तो पहले यह देखना पड़ता है कि उसके संभावित उपभोक्ता कौन से लोग हैं और अपने प्रतिदर्श में उसी समूह के लोगों को लिया जाएगा। तीसरा, उपभोक्ता चयनक। उपभोक्ता अध्ययन के आंकड़े प्राप्त करते समय कभी कभी उपभोक्ता चयनक अथवा पंचों का प्रयोग होता है। यह उद्देश्य पर निर्भर करता है कि उन्हें व्यक्तिगत अथवा समूह में रखा जाए। इन लोगों का अलग अलग कार्य हो सकता है, जैसे विज्ञापनों की जांच करना, विभिन्न वस्तुओं के संबंध में उनके विचारों का पता लगाना, खाने की वस्तुओं के स्वाद का परीक्षण करना इत्यादि। चौथा, प्रश्नावली सर्वेक्षण। उपभोक्ता अध्ययन में प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का उपयोग अक्सर होता है। इस विधि में कुछ लोगों द्वारा प्रश्नावली भरवा कर उनके विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है। प्रश्नावली निर्माण। एनेस्टेसी ने बताया है कि प्रश्नावली विधि से प्राप्त प्रत्युत्तर बहुत सी बातों को प्रभावित होता है, जैसे प्रश्नों का स्वरूप, संभावित उत्तरों की संख्या, उनका क्रम, उनकी विशेषताएं। प्रश्नों में संवेगात्मक शब्दों के प्रयोग से उत्तर में अंतर पड़ जाता है, अतः वे लोग जो प्रश्नावली निर्माण कर रहे हो उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नावली निर्माण के बाद उसे एक छोटे समूह पर प्रशासित करके तब उसका बड़े समूह पर प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जिनके लिए वह बनाया गया है। प्रत्युत्तर में झुकाव। प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता स्वयं जानबूझकर प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देता है। व्यक्तित्व और अभिवृत्ति मापने करते समय प्रश्नावली में बहुत से ऐसे प्रश्न रहते हैं जो नकारात्मक पक्ष का मापन करते हैं। प्रोजेक्ट जब ऐसे प्रश्नों को पढ़ता है तो वह वही उत्तर न देकर ऐसा उत्तर देता है जो वांछनीय है, अथवा वह उत्तर जिसके उसके अभिव्यक्तित्व में किसी प्रकार की कमी दिखाई ना पड़े। कुछ ऐसे भी उत्तरदाता पाए गए हैं जो हाँ या नहीं के रूप में प्रश्नों में या तो केवल हाँ अथवा नहीं पर ही उत्तर देते हैं। मूल्यांकन एवं मापन विधि। अर्थ विभेदक। इस विधि का विकास आसगुड ने किया था। आरंभ में इसका उपयोग अभिवृत्ति मापन के लिए किया गया था। उपभोक्ता अध्ययनों में इस विधि का उपयोग विभिन्न वस्तुओं, संचार माध्यमों, लोगों और संगठनों के अध्ययन के लिए होता है। इस विधि में परस्पर विरोधी विशेषणों की जोड़ी बनाकर प्रोजेक्ट के समक्ष उपस्थित किया जाता है और उनसे यह पूछा जाता है कि उसमें कौन सा उचित और संगत है। साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार के कई प्रकार होते हैं, जैसे संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित। संरचित साक्षात्कार में सर्वेक्षणकर्ता लोगों से मिलकर पूर्व निर्धारित प्रश्नों को उनसे पूछता है। यह विधि प्रश्नावली विधि से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि इसमें केवल प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। अर्धसंरचित साक्षात्कार में प्रश्न पहले से निर्धारित नहीं रहते, इसमें लचीलापन होता है। इस विधि से अधिक सूचनाएं प्राप्त होने की संभावना रहती है। दूसरा, प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि का प्रयोग ज्यादातर व्यक्तित्व परीक्षण में होता है, लेकिन आजकल इसका उपयोग उपभोक्ता अध्ययनों में भी किया जा रहा है। इसमें प्रयोजक के समक्ष जानबूझकर अस्पष्ट अंतसंचरित उत्तेजक उपस्थित क्रिया किया जाता है। इसके द्वारा प्राप्त उत्तर की प्रशिक्षित लोगों द्वारा व्याख्या की होती है। उपभोक्ता मनोविज्ञान में इस विधि से प्रेरणा, अभिवृत्ति और दूसरे संगत चरों का मूल्यांकन अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता मनोविज्ञान में निम्नलिखित प्रक्षेपण विधियों का उपयोग होता है। पहला, साहचर्य विधि। दूसरा, वाक्य पूर्ति विधि। तीसरा, निर्माण विधि। अन्य विधियाँ। यद्यपि कि उपभोक्ता अध्ययनों में ऊपर बताई गई विधियों का उपयोग होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य विधियाँ भी हैं जिनका उपयोग उपभोक्ता अध्ययनों में होता है। इन विधियों में प्रमुख है यंत्रों का उपयोग, एक तरफा दर्पण का उपयोग, कुछ अध्ययनों में निरीक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। विपणन अध्ययन। उपभोक्ता मनोविज्ञान में विपणन अध्ययन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के व्यवहार का, बाजारों और दूसरे संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता प्रत्याशा। उपभोक्ता व्यवहार व्यक्ति के व्यक्तित्व, अनुभव, मूल्य पर निर्भर करता है और इसमें परिवार, संदर्भ समूह और सामाजिक वर्ग से प्रभावित होकर पारिवारिक परिवर्तन होता है। उपभोक्ता व्यवहार और अभिवृत्तियाँ आर्थिक परिस्थिति और बेकारी से प्रभावित होती रहती है। किसी वस्तु अथवा सेवाओं के प्रति व्यक्ति का झुकाव खरीदने के लिए अथवा ना खरीदने के प्रति उनकी आशावादी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उत्पाद परीक्षण। आजकल जब कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो उसे बाजार में भेजने के लिए यह परीक्षण किया जाता है कि वस्तु उपभोक्ताओं में स्वीकार किया जाएगा। हैरिस ने उत्पाद परीक्षण का एक प्रयोग किया जिसमें उसने 10 चीनी नमूने के प्लेट बनाए गए और 140 स्त्रियों में कहा गया कि वे उन प्लेटों को देखकर बताएं कि यदि उन्हें खरीदना होता तो किस प्लेट को खरीदती। उन्हें प्रत्येक प्लेट की प्राथमिकताओं के आधार पर क्रम बतलाना था। प्रत्येक प्लेट की कीमत एक ही थी। बाद में जब वास्तविक बिक्री के आंकड़े प्राप्त किए गए तो यह देखा गया कि हैरिस के परिणाम में जिन प्लेटों को अच्छा बताया गया था उन्हीं प्लेटों की बिक्री सबसे अधिक हुई थी। इस प्रकार उत्पाद परीक्षण द्वारा वस्तुओं को बाजार में आने से पहले ही कितना पसंद किया जाएगा का पता लगा लिया जा सकता है। पैकेजिंग। संभावित उपभोक्ताओं से वस्तुओं की पैकिंग के विभिन्न डिजाइन के संबंध में उनके विचार का पता लगाए जाते हैं। ऐसे विचार अथवा पसंदगी बहुधा साक्षात्कार के माध्यम से पता लगाए जाते हैं। इस तरह उपभोक्ता अध्ययन में पैकिंग की विभिन्न डिजाइन पर काफ़ी शोध हुए हैं और जब उनकी डिजाइन में परिवर्तन किया गया तो उसके विक्रय पर महत्वपूर्ण प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्रय व्यवहार में विचार की सहभागिता। किसी वस्तु की खरीदारी में परिवार के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बाजार अध्ययनों से स्पष्ट है। ब्लैकवेल और उसके साथियों ने एक अध्ययन में वस्तुओं को खरीदने में निर्णय प्रक्रिया में पति और पत्नी की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन किया। निर्णय प्रक्रिया में पति अथवा पत्नी का एक दूसरे को किसी वस्तु को खरीदने के लिए कहना, किसी विशेष प्रकार के वस्तुएं लिए सलाह देना, कीमत के संबंध में विचार विमर्श करना इत्यादि बातें आती हैं। निर्णय प्रक्रिया। उपभोक्ता व्यवहार का प्रतिमान। आजकल इस बात को लेकर काफ़ी अध्ययन हो रहा है कि उपभोक्ता किस प्रकार किसी वस्तु को खरीदने का निर्णय करता है। इसमें निर्णय प्रक्रिया और उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है
जो उसे प्रभावित करती हैं। कुछ अध्ययनकर्ताओं ने ग्रह व्यवहार के विस्तृत प्रतिमान का निर्माण किया है। इन प्रतिमानों में वे सभी बातें आती हैं जो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, समक्ष और दूसरी वस्तुओं से संबंधित बातों, विज्ञापनों का प्रत्यावाहन जो क्रय को प्रभावित करती हैं, तथा वस्तुओं के मूल्यांकन में मदद करती हैं। क्रय व्यवहार में नियंत्रक की भूमिका व्यक्ति की विशेषताएं जैसे अनुभव, व्यक्तित्व गुण, अभिवृत्ति इत्यादि निभाती है। वस्तुओं के संबंध में सूचनाएं भी इन्हीं विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। जिन वस्तुओं का अक्सर क्रय करना पड़ता है उसमें अधिक सोच विचार नहीं करना पड़ता है, जैसे मंजन आदि। लेकिन ऐसी वस्तुएं जिनकी खरीदारी कभी कभी करनी होती है उनमें निर्णय प्रक्रिया सक्रिय होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूर्ण निर्णय प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें आती हैं। पहला, आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान। दूसरा, पूर्व अनुभवों के आधार पर वस्तुओं का तुलनात्मक मूल्यांकन। तीसरा, वस्तुओं के संबंध में बाहरी माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन। चौथा, चुनी हुई वस्तुओं की खरीदारी। पांचवा, खरीदी हुई वस्तुओं में संतुष्टि। इस प्रक्रिया में कभी भी कोई नई बात या सूचना क्रय या तो रुकवा सकती है अथवा टलवा सकती है। सूचनाओं के स्रोत। उपभोक्ता का निर्णय सूचनाओं के स्रोत पर निर्भर करता है। ऐसे सूचनाएं जो अपरिचित लोगों से मिलती हैं वे अधिक प्रभावशाली पाई गई जब उनकी तुलना रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिका अथवा अखबारों से प्राप्त सूचनाओं से की गई हैं। जब सूचनाएं आमने सामने मिलती हैं तो वे अधिक प्रभावशाली पाई गई हैं। इस परिस्थिति में किसी वस्तु के गुण अथवा दोषों के संबंध में पूरी जानकारी मिल जाती है। जोखिम का अनुभव। किसी वस्तु अथवा सेवाओं को प्राप्त करने में इस बात का जोखिम रहता है कि वह संतोषजनक ना हो, तो इसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक खतरा भी हो सकता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य अधिक हो तो यह आशा की जाती है कि वह अधिक टिकाऊ होगी, अतः अधिक जोखिम भी होगा। यदि किसी मूल्यवान वस्तु की खरीद में त्रुटि हो जाए तो सस्ते वस्तुओं की खरीदारी की तुलना में अधिक नुकसान का जोखिम रहता है। यदि खरीदारी में त्रुटि हो जाए तो उससे सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, व्यक्तित्व असंतुष्टि में वृद्धि हो सकती है अथवा स्वास्थ्य या सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के उपायों से जोखिम को कम करने का प्रयास करता है। यह उसकी स्वयं की विशेषताओं, उत्पाद की कोटि, क्रय का संदर्भ तथा दूसरे बातों पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के जोखिमों को कम कर सकता है। जोखिमों को कम करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि उत्पाद के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जाए। दूसरा तरीका यह है कि आप जिस ब्रांड की वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उसे ही भविष्य में प्रयोग करें। ऐसे ब्रांडों का भी उपयोग किया जा सकता है जिसका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है अथवा जो ज़्यादा कीमती हो। वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता निर्णय में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है अथवा इस विषय पर काफ़ी अध्ययन भी किए गए हैं और आगे भी हो रहे हैं। सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो वस्तुएं कीमती हैं वे अच्छी भी होंगी। व्यवहारिक अर्थशास्त्र। उपभोक्ता निर्णय में अर्थ मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक अर्थशास्त्र और व्यवहारिक अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें संबंधित ज़्यादातर अध्ययन कोटोना और उसके साथियों द्वारा किए गए हैं। इसमें उपभोक्ताओं के साक्षात्कार करके उनके प्रेरकों, अभिवृत्तियों और आशाओं की वस्तुओं के मूल्य में संबंध देखते हैं। उपभोक्ता व्यवहार इस बात से प्रभावित होता है कि भविष्य में उसकी क्रय शक्ति का क्या स्थिति रहेगी। यदि वह सोचता है कि भविष्य में किसी प्रकार की आर्थिक असुरक्षा नहीं रहेगी तो वह टिकाऊ अथवा महंगी वस्तुओं को खरीदने में पीछे नहीं रहता। उपभोक्ता व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करता है। जब उसकी एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो दूसरी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह प्रयत्नशील हो जाता है।